एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्ते। समकालीन रोमांस की दुनिया में कुछ लेखक ऐसे हैं जिनका नाम ही काफी है, और एमिली हेनरी उनमें से एक हैं।
बिल्कुल।
उनकी नई किताब फनी स्टोरी आते ही बेस्ट सेलर बन गई, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं।
हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है।
सवाल ये है कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है? क्या ये सिर्फ एक और यू नो एनिमीज टू लवर्स या फेक डेटिंग वाली कहानी है,
या इसमें कुछ और भी है?
हाँ, या इसमें कुछ ऐसा है जो आज के रीडर्स के साथ इतने गहरे लेवल पे कनेक्ट कर रहा है?
ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऊपरी तौर पर देखें तो फॉर्मूला वही लगता है। लेकिन एमिली हेनरी की खूबी इसी में है कि वो जाने पहचाने फॉर्मूले में एक नई जान डाल देते हैं।
अच्छा।
ये कहानी सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि जब आपकी लिखी लिखाई जिंदगी की कहानी को कोई फाड़कर फेंक दे
तो आप एक नई कहानी कैसे लिखते हैं?
हाँ बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मतलब दिल तोड़ने वाले पल से।
बिल्कुल, कहानी की ओपनिंग ही एक पंच की तरह है। हमारी हीरोइन है डाफनी विंसेंट। वो मिशिगन के एक छोटे प्यारे से शहर वेनिंग बे में अपने मंगेतर पीटर के साथ अपनी सपनों की जिंदगी शुरू करने वाली है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है,
एकदम परफेक्ट।
और फिर अचानक एक दिन पीटर उससे कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है।
और वो कोई और, पीटर की बचपन की दोस्त पीट्रा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि पीट्रा
डाफनी की भी सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट है।
एग्जैक्टली। तो ये एक डबल धोखा था। एक ही झटके में डाफनी ने अपना मंगेतर और अपनी सबसे अच्छी दोस्त दोनों को खो दिया।
उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई।
हाँ, उसका घर, उसकी मतलब पूरी जिंदगी, वो शहर में अकेली और बेघर हो गई।
और यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प मोड़ लेती है। डाफनी को रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती, और मजबूरी में उसे एक ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ता है जिसका दिल भी उसी जोड़े ने तोड़ा है।
माइल्स नोवाक।
हाँ, माइल्स नोवाक, जो पेट्रा का एक्स बॉयफ्रेंड है। तो सेटअप कमाल का है।
कमाल का। दो लोग जिन्हें एक ही कपल ने धोखा दिया,
अब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं।
और यहीं से किरदारों की असल परतें खुलना शुरू होती हैं। चलिए डाफनी की बात करते हैं।
हाँ बिल्कुल।
वो एक पीपल प्लीजर है।
अच्छा, मतलब हर किसी को खुश रखने वाली।
हाँ, उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल दी, यहाँ तक कि खुद को भी उसी सांचे में ढाल लिया जो उसके मंगेतर पीटर को पसंद था। उसका सबसे बड़ा डर यही था कि वो किसी और की कहानी में बस एक साइड नोट बनकर रह जाएगी,
या एक फुटनोट।
बिल्कुल। और पीटर के धोखे ने मानो उसके इसी डर को सच कर दिया।
ये बहुत रिलेटेबल पॉइंट है। हम में से कितने लोग रिश्तों में अपनी पहचान का एक हिस्सा खो देते हैं।
सही बात है।
लेकिन जब पीटर उसे छोड़ता है तो डाफनी के लिए ये एक तरह से खुद से दोबारा मिलने का मौका बन जाता है।
हाँ, उसे सोचना पड़ता है कि पीटर की मंगेतर के अलावा वो असल में है कौन।
और माइल्स के साथ रहना उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर करता है।
सही कहा। वो एक बच्चों की लाइब्रेरियन है जो उसे एक तरह का सुकून देता है, क्योंकि कहानियों में हर चीज का एक लॉजिकल अंत होता है। लेकिन अब उसकी अपनी जिंदगी की कहानी पटरी से उतर चुकी है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कैसे वो अपनी जिंदगी की कहानी की बागडोर अपने हाथ में लेती है।
तो डाफनी एक ऐसी इंसान है जिसने हमेशा खुद को दूसरों के हिसाब से बदला है, लेकिन माइल्स, वो तो इस मामले में बिल्कुल उल्टा लगता है ना?
बिल्कुल उल्टा।
बाहर से एकदम लापरवाह, सार्कास्टिक, किसी की नहीं सुनने वाला।
बिल्कुल। माइल्स का किरदार बहुत दिलचस्प है। उसका अपार्टमेंट पूरी तरह से बिखरा हुआ है,
जो उसके मन की हालत को दिखाता है।
हाँ बिल्कुल। और प्यार को लेकर उसका जो सिनिकल एटीट्यूड है ना, कि प्यार में तो आखिर में दिल ही टूटता है, वो असल में खुद को दोबारा हर्ट होने से बचाने की एक शील्ड है, एक कवच। वो दोबारा वो रिस्क नहीं लेना चाहता।
पेट्रा के जाने के बाद उसने अपने दिल के चारों तरफ एक दीवार बना ली है।
हाँ।
तो एक तरफ डाफनी है जो दूसरों के लिए खुद को बदलती रही, और दूसरी तरफ माइल्स है जो किसी को अंदर आने ही नहीं देना चाहता। जब ये दोनों एक साथ एक घर में आते हैं तो शुरुआत कैसी होती है? यकीनन बहुत अजीब रही होगी।
शुरुआत बहुत असहज और अजीब होती है। दोनों अपने अपने गम में डूबे हैं। उनका एक दूसरे पर सार्कास्टिक कमेंट्स करना वो असल में अपने दर्द से डील करने का एक तरीका है,
एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म।
हाँ, लेकिन फिर एक दिन जब वे शहर में अपने एक्स पार्टनर्स को एक साथ खुश देखते हैं तो वो एक फैसला करते हैं।
अच्छा।
वो तय करते हैं कि लोगों की दया और तरस भरी निगाहों से बचने के लिए वे अपनी इस दुख भरी कहानी को एक फनी स्टोरी में बदल देंगे।
और फिर आता है वो फेक डेटिंग वाला प्लान।
हाँ, सच कहूं तो जब मैंने ये पढ़ा मुझे लगा कि ये थोड़ा फिल्मी है, लेकिन जिस तरह से ये दोनों इसे करते हैं वो बहुत मजेदार है। वो सोशल मीडिया पर खुश दिखने वाली तस्वीरें पोस्ट करते हैं, घूमने जाते हैं
ताकि अपने एक्स पार्टनर्स को जला सके।
हाँ, और दुनिया को दिखा सके कि देखो हम भी मूव ऑन कर चुके हैं।
हाँ, ये जो नाटक है यही उनके रिश्ते का टर्निंग पॉइंट बनता है,
क्योंकि नाटक करते करते वे असल में एक दूसरे को जानने लगते हैं।
वो फेक डेट्स असली लगने लगती हैं।
बिल्कुल, कैमरे के लिए जो नजदीकियां थी उन्हें एक असली गर्माहट आने लगती है। देर रात तक किचन में बैठकर वो बातें करते हैं जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई। डैफनी अपने गैर जिम्मेदार पिता के बारे में बताती है,
जिसने उसे हमेशा एक अनिश्चितता के माहौल में रखा।
हाँ, और माइल्स भी अपनी दीवारें थोड़ी नीचे करता है।
अच्छा,
वो बताता है कि प्यार पर से उसका भरोसा क्यों उठा, जो कहीं ना कहीं उसके अपने परिवार के अनुभवों से जुड़ा है।
तो ये जो झूठा रिश्ता था वो असल में उन्हें एक दूसरे के सामने सबसे ज्यादा सच्चा और वल्नरेबल होने का मौका देता है।
हाँ, उनकी दोस्ती धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है।
और फिर वो पल आता है जिसका दोनों को डर था,
पीटर और पेट्रा का सामना।
हाँ, उन्हें उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन जब डैफनी पीटर को देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसे अब उतना दर्द नहीं हो रहा।
उसे एक अजीब सी दूरी महसूस होती है।
उसे समझ आता है कि माइल्स के साथ रहकर उसने खुद का एक नया, ज्यादा मजबूत वर्जन खोज लिया है। वो अब वो लड़की नहीं है जो पीटर के प्यार में थी।
तो इस मुआवजे के बाद उनके फेक रिलेशनशिप का नाटक खत्म हो जाता है।
हाँ, क्योंकि अब भावनाओं को छिपाने का कोई मतलब नहीं रह जाता।
वे एक दूसरे से अपनी सच्ची फीलिंग्स को स्वीकार करते हैं।
लेकिन एमिली हेनरी की कहानियों की यही खूबसूरती है, वो और वे हमेशा खुशी खुशी साथ रहे पर खत्म नहीं होती।
नहीं, असल कहानी तो अब शुरू होती है।
मतलब जैसे ही रिश्ता असली होता है मुश्किलें शुरू हो जाती हैं।
बिल्कुल, जैसे ही वे एक असली कपल बनने की कोशिश करते हैं उनके पुराने डर वापस आ जाते हैं।
हाँ, ये बहुत ही असलियत के करीब लगता है।
हाँ, कि कैसे हमारा अतीत हमारे आज पर साया डालता है।
डैफनी को फिर से छोड़े जाने का डर लगने लगता है और माइल्स को फिर से दिल टूटने का।
अपने कवच में वापस चले जाना प्यार करने का साहस दिखाने से ज्यादा आसान लगता है और वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं।
ये ब्रेकअप वाला हिस्सा कहानी के लिए बहुत जरूरी लगता है। ये उन्हें अकेले में अपनी कमजोरियों का सामना करने का मौका देता है ना?
घुटने के दर्द से कहीं ज्यादा बुरा है जिससे वो भाग रहा था। वो समझता है कि डैफनी के साथ एक भविष्य बनाना एक ऐसा जोखिम है जिससे वो खुशी खुशी उठाना चाहता है।
और फिर वे दोबारा साथ आते हैं, लेकिन इस बार की नींव अलग होती है।
इस बार उनका रिश्ता किसी मजबूरी या नाटक पर नहीं, बल्कि ईमानदारी, भरोसे और एक गहरे सच्चे प्यार पर टिका होता है।
वे अपनी फनी स्टोरी को एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल देते हैं।
हाँ,
तो अगर हम इस कहानी के दिल तक पहुंचने की कोशिश करें तो इसका सबसे बड़ा संदेश क्या है? मुझे लगता है इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है अपनी कहानी खुद लिखना।
बिल्कुल,
ये थीम आजकल की कई कहानियों में दिख रही है। आपको क्या लगता है ये आइडिया आज के रीडर्स के साथ इतना रेजोनेट क्यों कर रहा है?
मुझे लगता है क्योंकि आज की दुनिया में हम सब पर किसी न किसी तरह की कहानी थोपी जाती है, समाज की, परिवार की या सोशल मीडिया की।
सही बात है।
ये कहानी हमें बताती है कि आपके पास हमेशा ये ताकत होती है कि आप उस स्क्रिप्ट को फाड़ कर फेंक दें और अपनी कहानी खुद लिखें।
डैफनी और माइल्स दोनों ही किसी और की कहानी में महज किरदार बनकर रह गए थे
और अंत में वे अपनी जिंदगी के लेखक बनते हैं।
हाँ, ये तो है ही, लेकिन मैं कहूंगी कि उससे भी ज्यादा जरूरी थीम है फाउंड फैमिली या मुंह बोले परिवार का।
ये बहुत अच्छा पॉइंट है।
डैफनी को लगता है कि उसने पीटर के साथ अपना घर खो दिया, पर असल में उसे माइल्स के साथ उस बिखरे हुए अपार्टमेंट में पहली बार घर जैसा महसूस होता है,
जहाँ वो जैसी है वैसी रह सकती है।
हाँ, घर कोई ईंट पत्थर की जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है जहाँ आपको सुरक्षित महसूस हो।
बहुत सुंदर बात कही आपने, और इसी से जुड़ा एक और विषय है, धोखे से उभरने की प्रक्रिया,
हीलिंग का प्रोसेस।
हाँ, ये किताब दिखाती है कि हीलिंग कोई सीधी लाइन नहीं होती, इसमें अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं,
उतार चढ़ाव आते हैं।
बिल्कुल, जैसा कहानी में एक जगह कहा गया है, ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएं कि किसने आपको चोट पहुंचाई। इसका मतलब है कि आप उस दर्द को इस तरह संभालना सीखें कि वो आपको तोड़ न सके। ये उपन्यास उस पूरी प्रक्रिया को बहुत ईमानदारी और सम्मान के साथ दिखाता है।
तो कुल मिलाकर फनी स्टोरी सिर्फ एक हल्की फुल्की प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है।
हाँ, ये बहुत गहरी है।
ये हमें याद दिलाती है कि जीवन के सबसे दर्दनाक अंत भी एक खूबसूरत नई शुरुआत का मौका हो सकते हैं।
और ये कि सच्ची खुशी अक्सर जिंदगी के अनियोजित, अस्त व्यस्त और अप्रत्याशित मोड़ों पर ही मिलती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।